आप हैं SBS हिंदी के साथ।
पेश है आज के मुख्य समाचार विशाली जैन के साथ। चुनावी कैनवसिंग के दूसरे हफ्ते में गठबंधन के कैंपेन केंद्र में सीमा सुरक्षा। भारत में एक दिन में कोरोना मामलों में 90% की उछाल। और टेनिस में स्टेफानोस सिसिपास ने जीता मोंटे कार्लो मास्टर्स। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के अपने दौरे में सीमा सुरक्षा पर केंद्रित दिखे। उन्होंने नौसेना पेट्रोलिंग के लिए $124 मिलियन की लागत से दो नई नेवी बोट की घोषणा की है। उन्होंने इसी के साथ लेबर की टेम्पररी प्रोटेक्शन वीजा को लेकर नीति पर भी सवाल उठाए। ये नीति गठबंधन की नीति के अंतरंग भाग है, जिसमें सीमा पर आने वाली नावों और को लौटाना और ऑफशोर प्रोसेसिंग शामिल है। इस नीति के तहत बिना वीजा ऑस्ट्रेलिया आने वालों को ये वीजा दिया जाता है और सुरक्षा भी दी जाती है, पर लेबर ने इस वीजा को परमानेंट करने के साथ ही लंबे समय के लिए रहने के अधिकार भी देने की बात की है। श्री मॉरिसन का कहना है कि अगर लेबर की सरकार टेम्पररी प्रोटेक्शन वीजा को इस तरह से विस्तृत करती है और आती है, तो लोगों की तस्करी करने वाले अपराधी फिर सक्रिय हो जाएंगे। लेकिन इस बात का समर्थन करने के लिए वे कोई सूचना नहीं दे सके थे।
I don't go into intelligence matters. What I do know is the experience. And I know this experience because I lived it. And I know that when Labor abolished temporary protection visas in 2008, the armada of people smugglers' boats came to Australia, and that was the launching point.
फेडरल विपक्ष ने एक नए चुनावी रुझान को दरकिनार कर दिया है, जिसमें ये सामने आया है कि लेबर नेता एंथनी एल्बनीजी और विपक्ष के लिए जनता का समर्थन कम हो रहा है। दी एज और दी सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड द्वारा किए गए द रिजॉल्व पोल में पाया गया कि कैंपेनिंग के पहले हफ्ते के बाद मतदाताओं का एक हिस्सा लेबर से दूर हो गया है। लेकिन लेबर की कोष प्रवक्ता ने एबीसी से कहा कि मतदाताओं की संभावित प्रतिशत तो कैनवेसिंग के दौर में बढ़ती घटती रहती है, लेकिन उनकी पार्टी का ध्यान उन मुद्दों पर केंद्रित रहेगा जो मतदाताओं को प्रभावित करेंगे।
The issues in the campaign for us and for everyone we're talking to on the ground, it's cost of living, everything going up, wages not keeping pace and people struggling to make ends meet. It's about Medicare, access to healthcare, and it's about the future of the country. That's what we have to stay focused on, because that's the contest of ideas in this campaign. And I guess we leave all of you to talk about, you know, the ins and outs and commentate on the opinion polls. But for us, next 33 days are about what the Australian people are talking to us about and our solutions for some of those pressures.
लेबर ने चेताया है कि सरकार ने नए स्वास्थ्य मंत्री का चुनाव मेडिकेयर में बड़ी कटौतियों का कारण बन सकता है। सेनेटर एन रूस्टन, जो फिलहाल सोशल सर्विसेज और महिला सुरक्षा मंत्रालय संभालती हैं, वे गठबंधन के दोबारा सत्ता में आने पर स्वास्थ्य मंत्रालय संभालेंगी। लेबर नेता एंथनी एल्बनीजी ने कैनवसिंग के पहले हफ्ते लेबर की स्वास्थ्य नीतियों का प्रचार करते हुए बिताया है और कहा है कि सरकार जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं में कटौती कर रही।
This is a health minister now, designate, if they're successful in the election, who we know will undermine Medicare, who has said that the current model is not sustainable, who has said that Medicare funding is just putting things on the credit card and that it needs to change.
सीनेटर एन रिस्टन ने आज सुबह एबीसी से बात करते हुए कहा कि मेडिकेयर तो कानूनी रूप से रक्षित अधिकार है। 18 साल और उससे अधिक के ऑस्ट्रेलियाई लोग आज रात 8 बजे तक मतदान सूची के लिए पंजीकरण कर सकते हैं या सूची में अपनी निजी जानकारी में परिवर्तन कर सकते हैं। आप अपनी जानकारी ऑस्ट्रेलियन इलेक्टोरल कमीशन की वेबसाइट check.aec.gov.au पर चेक कर सकते हैं। चुनाव 21 मई को होंगे। दूसरी ओर जली स्टेगल ने प्रधानमंत्री की वारिंगा सीट के लिए चुनी हुई उम्मीदवार के इस चुनाव की निंदा की है। स्वतंत्र सांसद स्टेगल ने मांग की है कि कैथरीन डीव से ये समर्थन वापस ले लिया जाना चाहिए। स्टेगल ने ये मांग तब की जब ये सामने आया कि डीव्स ने ना ही केवल समलैंगिक विरोधी पोस्ट किए थे बल्कि ट्रांसजेंडर बच्चों को भी निशाना बनाया था। सुश्री डीव्स अब वे ऑनलाइन पोस्ट डिलीट कर चुकी हैं। वारिंगा सांसद स्टेगल ने कहा कि वारिंगा समलैंगिक शादियों का तीसरा सबसे बड़ा समर्थक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ध्यान भटकाकर अपनी सरकार की कमियों को छुपाना चाहते हैं।
वारिंगा इज अ काइंड एंड इंक्लूसिव सोसाइटी एंड आई थिंक वोटर्स इन वारिंगा आर रियली टायर्ड ऑफ पर्सनालिटीज ओवर पॉलिसीज काइंड ऑफ पॉलिटिक्स। They want to see real policies around the big issues of our time. And overwhelmingly, the feedback I get is that's climate and environment and integrity. I would argue strongly that Scott Morrison, by making a captain's pick, his motive is divisiveness. It is, to distract from the major policy problems he has when it comes to integrity, when it comes to his values, and when it comes to his climate policy.
उत्तरी ब्रिस्बेन में एक 6 साल के बच्चे की एक घर में आग लगने से मृत्यु हो गई है। क्वींसलैंड फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज का कहना है कि क्लेफील्ड के घर के पीछे में आग लग गई थी जहां ये हादसा हुआ। घर से एक पुरुष, महिला और एक 4 साल की बच्ची को तो बचा लिया गया, लेकिन ये 6 साल का बच्चा अपने कमरे में फंस गया था। एक्टिंग सुपरिटेंडेंट मार्क हेल्वर्सन का कहना है कि उनके दल ने हर संभव प्रयास किया था।
And they're experienced in this sort of thing. But yes, it is devastating for them as well. So they did the very best that they could. And I know that they themselves are feeling down. And the end of Easter for the crews is also going to be a really sad time for them. However, they did what they did in the very best. And from the perspective, they could not have possibly done any more. And it should be remembered that 3 people were saved. So that is the bonus out of it. However, any loss of life ever is a real tragedy.
लग्जरी क्रूज शिप पैसिफिक एक्सप्लोरर सिडनी हार्बर पहुंच गया है। कोरोना के फैलाव के चलते मार्च 2020 में लगे क्रूज लाइनर्स पर बैन के बाद ये पहली बार है कि ये जहाज ऑस्ट्रेलिया लौट रहे हैं। पीएनओ ऑस्ट्रेलिया का $400 मिलियन का ये लग्जरी लाइनर, जिसमें 2000 यात्री सवार हो सकते हैं, आज सुबह ही सिडनी पहुंचा और उम्मीद है कि इस महीने के आखिर से सुचारू भी हो जाएगा। टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट फोरम की मुख्य सचिव मार्जी ओसमोन का कहना है कि क्रूज लाइनर के लौटने के लिए सभी कोरोना नियमों का पालन किया जा रहा है।
It does take time. They've got to be scheduled in. We've got to get them back here. It's a bit like aviation. You know, we needed an aviation attraction fund to get those international airlines back into Australia. But having said that, there is massive pent-up demand here in Australia. We're just about the biggest cruising nation in the world.
और अब अंतर्राष्ट्रीय खबरें। रूसी आक्रमण के लगभग 2 माह बाद यूक्रेनियाई रिफ्यूजियों की गिनती 5 मिलियन तक पहुंच गई है। इस आंकड़े में अभी भी वे 7.1 मिलियन लोग शामिल नहीं हैं जिन्होंने यूक्रेन में रहते हुए ही सुरक्षा की गुहार की है और जो खाने, पानी और सुरक्षा की भीषण कमी से जूझ रहे हैं। युद्ध के बढ़ते स्तर को देखते हुए मानवीय सहायता और सामान की मांग बढ़ती जा रही है। वर्ल्ड विजन ऑस्ट्रेलिया के मुख्य सचिव डैनियल वर्ड्सवर्थ ने चेताया है कि ये आंकड़ा अभी और भी बढ़ेगा।
The 5 million number is just—it's hard to get your mind around it. But I think, in some ways, for World Vision, the even more shocking number is the fact that half of the children of Ukraine are now displaced. World Vision is really taking its focus and making its focus inside Ukraine. That's why I've decided to return to the region, and I'm going back in the next week to help with the World Vision response, both on the border but inside Ukraine. We have to do something about these millions of people inside that country that are desperately looking for safety.
भारत में और अब खबरें भारत से। भारत में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते दिख रहे हैं। नतीजतन पिछले 24 घंटे के दौरान देश में लगभग 2183 नए मामले दर्ज किए गए हैं। बीते दिन यानी 17 अप्रैल की सुबह 8 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में 1,150 मामले सामने आए थे। ऐसे में ये उछाल लगभग 90% का है। हाल के दिनों में दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते नजर आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में भारत में 214 कोरोना मरीजों की मृत्यु भी दर्ज की गई है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 186.54 करोड़ टीकों की खुराकें दी जा चुकी हैं। देश भर में पिछले कुछ दिनों में कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज की गई थी, लेकिन पिछले दो दिनों में फिर तेजी देखी गई है। दूसरी ओर भारत की राजधानी दिल्ली में ऑटो, टैक्सी और मिनी बस चालकों के विभिन्न संगठनों ने आज से हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। इससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना भी पड़ सकता है। विभिन्न यूनियन किराया दरों में बढ़ोतरी और सीएनजी की कीमतों में कमी की मांग कर रहे हैं। अधिकतर संगठनों ने कहा कि वे एक दिवसीय हड़ताल पर रहेंगे, लेकिन सर्वोदय ड्राइवर एसोसिएशन दिल्ली ने कहा है कि वे आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। दिल्ली सरकार द्वारा समयबद्ध तरीके से किराया संशोधन पर विचार करने के लिए एक समिति बनाने की घोषणा के बाद भी संगठनों ने हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। सर्वोदय ड्राइवर एसोसिएशन दिल्ली के अध्यक्ष कमलजीत गिल का कहना है कि ईंधन की कीमतों में कमी और किराए में संशोधन कर हमारी मदद के लिए सरकार द्वारा कोई कदम ना उठाए गए। इससे हम सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला कर रहे हैं। शहर में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के पूरक के रूप में 90,000 से अधिक ऑटो और 80,000 से अधिक पंजीकृत टैक्सी हैं। और अब डॉलर का हाल। आज यानी सोमवार को ये खबर लिखे जाने तक एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की भारतीय रुपयों में कीमत 56.16 रुपये और एक अमरीकी डॉलर की तुलना में कीमत 74 सेंट्स थी। और अब खबरें खेल के मैदान से। टेनिस के विश्व नंबर 5 खिलाड़ी स्टेफेनो सिसिपास ने मोंटे कार्लो में अलेजांड्रो डोविडोविच फोकिना को हराकर मोंटे कार्लो मास्टर्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। डेविडोविच फोकिना ने दूसरे चरण में नोवाक जोकोविक को हराया था और अपना पहला एटीपी फाइनल खेला था। सिसिपास ने पहला सेट जीतने से ही शुरुआत की और रोमांचक रहे इस मैच को 1.5 घंटे में ही समाप्त कर दिया। और अंत में एक नजर कल यानी मंगलवार को देश के प्रमुख शहरों के मौसम के हाल पर। पर्थ में कल तेज धूप खिली रहेगी। यहां अधिकतम तापमान 27 डिग्री जबकि न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। एडिलेड में हल्की बरसात की आशंका है। अधिकतम तापमान 20 जबकि न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मेलबर्न में दिल ढलने के साथ बरसात कम होगी। अधिकतम तापमान 19 जबकि न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। देश की राजधानी कैनबरा में बादल घिरे रहेंगे। अधिकतम तापमान 17 जबकि न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। सिडनी में कल देर शाम के बाद बरसात बताई जा रही है। अधिकतम तापमान 26 जबकि न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। और ब्रिस्बेन में कल धूप छांव का मौसम बना रहेगा। अधिकतम तापमान 28 जबकि न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। डार्विन में धूप ही धूप होगी और अधिकतम तापमान 34 जबकि न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। भारत की राजधानी नई दिल्ली में कल तेज धूप खिली रह सकती है। दिल्ली का अधिकतम तापमान 42 जबकि न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। समाचार में आज इतना ही। नमस्कार।
ऐसी ही और कहानियां सुनना चाहते हैं? एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई या फिर जहां आप पॉडकास्ट सुनते हैं वहां हम हैं।